हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। डियर प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत गोपियों का गीत जो उन्होंने वेणु गीत के रूप में गाया है। आप तो नहीं, नेट नहीं है, चलता है तो देखिए, नहीं तो फिर इसको रेस्ट करना पड़ेगा, और मेरे पास साधन नहीं है, नेट चला गया है, ये मेरे फोन का नेट है, चल गया तो देखेंगे। 15 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। नद्यस्तदा तद उपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित। हाँ जी बोलिए, आपका आवाज तो आ रहा है। हरे कृष्णा बोलिए। हाँ जी बोलिए, आपका आवाज तो आ रहा है। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
या प्रभु जी आप ये वीडियो ऑफ करके कर दें तो आई थिंक दैट शुड बी बेटर।
हाँ हरे कृष्णा,
वीडियो आपका आवाज क्रैक कर रहा था बीच में।
अब ठीक है,
बीच में क्रैक कर रहा था।
नद्यस्तदा तदोपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनोभाव भग्न वेगा।
नहीं अभी भी वो वॉइस जो है वो लहरा रही है।
आलिंगनः स्थः गीतम उरमि भुजैः मुरारे गृणन्ति पाद युगलम कमलोपहारा। अब नदियों का गोपियां वर्णन कर रहे हैं। नदियस्तदा तद उपधार्य मुकुंद गीतम, मुकुंद जब गीत गाते हैं, वेणु गीत गाते हैं, तो नदियां भी, जमुना नदी है, मानसी गंगा है, पावन सरोवर है, जो भी सुंदर स्थान है जल के, वो आवर्त लक्षित मनोभाव भग्न वेगा, उनके चलना बंद हो जाता है, वो समुद्र की तरफ नदी जाती है, वो रास्ते में रुक जाती है। आलिंगनास्थ गीत उर्मि भुजैः मुरारी, मुरारी के चरणों को अपने छोली रूप भुजाओं से आलिंगन करती हैं। गृणंती पाद युगलम, भगवान के चरण कमलों को पकड़ लेती हैं प्रेम पूर्वक, और फिर कमल उपहारा, और कमल जो उनमें खिले हुए हैं वो भगवान को उपहार के रूप में देती हैं। भगवान की वेणुगूत गीत को सुनकर नदियां उनके मन में भगवान के प्रेम का उदय होता है, और उनका बहना जो प्रवाह है वो रुक जाता है, और एक जगह वो भंवर बन जाता है, और उनकी छोलियों के भुजाओं के द्वारा नदियां मुरारी के चरण कमलों का आलिंगन करती हैं, और अपने अंदर खिले हुए कमलों को, फूलों को उनके चरणों में अर्पण करती हैं। मानसी गंगा, यमुना जैसी नदियां भगवान के वेणु गीत का गान सुनकर मधुर्य प्रेम से विवल हो जाती हैं, नवयुवक भगवान श्री कृष्ण को आलिंगन करने के लिए। गोपियां कहती हैं, ये देखो तो किस प्रकार के जीव हैं, जल जल है, परंतु उनके हृदय में भी कृष्ण के लिए माधुर्य भाव उत्पन्न हो रहा है, तो फिर हम गोपियां अगर कृष्ण से प्रेम करती हैं तो हमारी निंदा क्यों की जाती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, ऐसा नहीं है वेणु गीत केवल गोपियों को आकर्षित करता है, ये श्लोक उत्तर दे रहा है कि नदियां बहाव को रोक के और भंवर बन जाती हैं। इसका मतलब उनके धारा रुक जाती है। किस कारण से? प्रेम के कारण। उनके हृदय में कृष्ण के माधुर्य प्रेम का उदय होता है। वो समुद्र की तरफ जाना ही बंद कर देती हैं। समुद्र क्या लगता है नदियों के? समुद्र नदियों का पति है। और उनमें बहुत लज्जा है, वो अपने आप को रोक लेती हैं। और जैसे ही उनका पानी रुकावट के कारण ऊपर उठता है, तो जो छोलियों के छोलियां बनती हैं, वो भुजाएं बनाकर मुरारी के चरणों को आलिंगन करती हैं, जो नदी के किनारे पे भगवान जो है जमुना पुलीन पे खड़े हैं, मानसी गंगा के तट पे खड़े हैं, साधा कुंड पे खड़े हैं, तो वहां जल आकर उनको आलिंगन करता है और कमल को लेके उनके चरणों में अर्पित करता है। कमल का एक और अर्थ है जल। तो इसका फिर अर्थ ये होगा, भगवान को चरणों में जल अर्पण करती हैं। जैसे भगवान के चरण धोने के लिए पाद्य, जैसे कोई मेहमान आता है उसके चरण धोते हैं, ये भगवान को चरण अर्पण जल अर्पण करते हैं चरण धोने के लिए। और कमला का अर्थ धन भी है, लक्ष्मी है कहते हैं। तो धन तो इनका पति तो है समुद्र, जिसके अंदर मुद्राएं ही मुद्राएं हैं, धन ही धन है। परंतु समुद्र इनको रोकता नहीं है, इनको टोकता नहीं है कि क्यों आप मेरे पास नहीं आती हैं, क्यों आप कृष्ण से प्रेम करती हैं। परंतु हमारे पति तो हमको रोकते हैं। नदियों के पति समुद्र उनको नहीं रोकते हैं। अपने भावों को रोकने में असमर्थ नदियां, जो वैसे तो जड़ है, कोई चेतन नहीं है, परंतु उनके हृदय में कृष्ण प्रेम के भाव के उदय होने के कारण। हाँ जी बोलिए। हाँ जी हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा विष्णु
प्रभु जी, बीच बीच में वॉइस आपका डिसअपीयर हो रहा है, गायब हो रहा है।
अब ये मेरे बस में नहीं है, इसको चालू रखना है कि बंद करना है, क्योंकि मैं नेट मेरे हाथ में नहीं है।
चलिए तो फिर चालू रखते हैं, जितना कुछ तो
आज जो भी 10 मिनट और इसे एक ये श्लोक पूरा कर लेते हैं।
ठीक है।
तो नदियां अपने भावों को नियंत्रण में न रखने के कारण वो जड़ होते हुए भी चेतन की तरह अति आकर्षण के साथ भगवान के माधुर्य रस का प्रकट्य कर उनके हृदय में हो जाता है। यमुना नदी है कि मानसी गंगा है, वो भी बड़े ध्यान से कृष्ण की बांसुरी के ध्वनि को सुनती हैं। और जो राग उसमें गाया जाता है इतना आनंदमय है, और जिससे भगवान का सानिध्य मुकुंद का हो जाता है, तो सब संकट समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि मुकुंद आनंद का सागर है। और जो उनके अंदर भंवर बनते हैं, उसका अर्थ है कि उनके हृदय में बहुत भाव उत्पन्न होते हैं भगवान को प्राप्त करने के। और वो अपने अंदर खिले हुए कमल, अपने जो छोलियां हैं उनके भुजाएं बनाकर भगवान के चरणों में अर्पण करती हैं। भगवान मुरारी के चरण कमलों को पकड़ लेती हैं, आलिंगन करती है। हरे कृष्ण बेटा। तो श्री राजीव गोस्वामी लिखते हैं पहले क्या होता है, पहले अपनी धारा से कमल को तोड़ लेती हैं, फिर भगवान के चरणों में अर्पण करती हैं, फिर भगवान का चरण पकड़ लेती हैं। इसका मतलब उन भगवान के चरणों के चारों ओर जल को घेरा बना लेती हैं, ये बांसुरी की धुनी सुनकर और इन नदियों के अंदर इन जल के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं अपने प्रीतम कृष्ण के लिए। और विशेष रूप से ये कमल जो ब्रज में प्रकट होते हैं और ब्रज की सरोवरों और नदियों में प्रकट होते हैं, वो तो विशेष रूप से भगवान को बहुत प्रिय है। नदियों को तो समुद्र की ओर जाना चाहिए, जो उनका पति है उनको अर्पण करना चाहिए, परंतु वो कृष्ण को अर्पण करती हैं। ये वृंदावन की नदियां और वृंदावन के कमल कृष्ण के चरणों का ही आलिंगन करना चाहते हैं। वामन पुराण में लिखा है मुरारी नाम का एक असुर था जिसको भगवान ने जिसका उद्धार किया था। गोपियां भगवान के चरणों को नारायण, कृष्ण जैसे नारायण है, उससे जल गंगा का जल कहां से निकला है, भगवान नारायण के चरणों से निकला है, इसलिए वो कृष्ण के प्रेम करने से अपनी मर्यादा और सतीत्व को भंग नहीं करते हैं। ये गंगा कहां से निकली है, भगवान के चरणों से निकली है, तो ये सारी नदियां भगवान के चरणों से को ही प्रेम कर रही हैं, इसलिए समुद्र उनको कुछ नहीं कहता है पति होते हुए भी। ये नदियां बहुत सौभाग्यशाली हैं, भगवान के बांसुरी की ध्वनि सुनकर हमको कह रही हैं कि आप भी शुद्ध सिद्धि को प्राप्त करो, जन्म सफल करो, कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ाओ, परंतु हम क्या करें, हम तो अपने घर गृहस्थी से मुक्त नहीं हो पा रही और ना ही हमारी इतनी बड़ी भुजाएं हैं जिससे हम कृष्ण का आलिंगन करें। सत्य तो ये है कृष्ण जैसा चंद्र, कृष्ण चंद्र जब बांसुरी में सुंदर राग आलापते हैं, सूखे वृक्षों के शाखाएं और पत्तियां एकदम हरी होने लगती हैं, पत्थर पिघलने लगता है, नदियां बहने बंद कर देती हैं, सब प्रकृति के विपरीत होने लगता है, पानी रुक जाता है, नदियां अपने किनारों के ऊपर उछलने लगती हैं, और उन न उछाल से कमलों को पकड़ के भगवान के चरणों में अर्पण करती हैं। उस गोपियां समझती हैं कि ये नदियां भी भगवान की प्रेमी हैं और चेतन हैं, और वास्तव में चेतन क्यों नहीं है, यमुना कालिंदी के रूप में तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ महारानी पटनानी है। अब चेतन जीवों की क्या बात करें जिनको चेतना है, अचेतन जीव नदियों की बात तो देखो, गाय है, पक्षी है, वो तो फिर भी चेतन है, ये तो जड़ है। नदियां यमुना है, मानसी गंगा है, वो भी भगवान की बांसुरी को सुनने का आनंद लेते हैं, और उसी समय उनका बहना बंद हो जाता है, और नदियों के अंदर जैसे किसी बहती हुई नदी में रुकावट डालेंगे तो अंदर भंवर बन जाता है, पानी उछल के घूमने लगता है, ये उनके हृदय में कृष्ण प्रेम के लहरें उठने लगती हैं। मूरा एक बहुत बड़ा शक्तिशाली असुर था। शंकर जी ने उनको एक आशीर्वाद दिया था, जो भी उनके वक्ष स्थल पे हाथ रखेगा उस वो मर जाएगा, ये वामन पुराण में वर्णन है। वो नारायण का शत्रु था। तस्मान नंदात्मजो अयम ते नारायण समो गुणई। गर्ग आचार्य ने जब नामकरण संस्कार किया था भगवान श्री कृष्ण का, तो कहा था कि ये नारायण के समान गुणों में रहेगा। तो गर्ग से ये समाचार मिला था तो ब्रजवासी कृष्ण को नारायण के नाम से भी कहते थे, और कहते उनके समान इनके गुण होंगे। जैसे पहले उन्हें मूरा को मारा था, भगवान के चरण कमलों को नदियां पकड़ के बड़े पीड़ा के साथ प्रार्थना करती हैं, कमलों को चरणों में अर्पण करती हैं, ये उपहार दे के कहती है हमारी रक्षा करो मूरा से, और परंतु हम ऐसा नहीं कर पाती हैं, ये गोपियां कह रही हैं। मुरारी के वेणु गीत आनंद देता है मुकंद, जिसके मुख में कुंद जैसे पुष्प मुस्कराहट है। मुकंद का अर्थ है मुख, कुंद मुख का अर्थ है जिनका मुख मंडल, और कुंद का अर्थ है और जैस्मिन के पुष्प। तो कुंद मुकुंद मुस्कुराना, इसका मतलब सुख देना। तो मुरारी जो है उसका संगीत सुख देता है मुकुंद, क्योंकि ये अमृत, ये साक्षात अमृत का भरा हुआ है, और नदियों की लहरें इच्छाओं का रूप धारण कर लेती हैं। अथवा मुकंद गीत मा गीतम आवर्त, गीत मावर्त, कृष्ण के वेणु गीत के मां का मतलब धन। उस धन को प्राप्त करने के लिए नदियों के हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है, उनके चरणों को प्राप्त करने की, इसलिए वो आगे न बढ़ के पीछे घूम के आके कृष्ण के चरणों का आलिंगन करती हैं। बड़े उनके हृदय में प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं। और कृष्ण को जब ऐसे नदियां आलिंगन करती हैं अपनी लहरों से, तो कृष्ण स्तब्ध होकर उसका आनंद लेते हैं। और नदियां रुक जाती हैं और कृष्ण भी रुक जाते हैं, वो उनका आलिंगन करके सुख लेती हैं। और लक्ष्मी कमला, इसका मतलब लक्ष्मी है, उसको अर्पण करती हैं। वैसे लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है, लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, परंतु वो इतनी भाग्यशाली है कि लक्ष्मी कमला भगवान को अर्पण करती है, और हम इतनी अभागिनी है कि भगवान को जाके वन में देख नहीं सकते। एक और अर्थ इसका सनातन गोस्वामी पाद करते हैं कि भगवान के वेणु गोत का श्रवण करके नदियां अपना स्वाभाविक प्रवाह जो समुद्र की तरफ होता है, उसको त्याग देती हैं। और वो ऐसा रूप धारण कर लेती हैं जैसे लगता है कि उन्होंने बहुत सुंदर आभूषण धारण कर लिए लेते हैं, जैसे गले में कंठमाला पहनी हुई है, बड़ा हार, नौलखा हार पहना है। उपहार का अर्थ यह है कि नदियों ने अपना चलना बदल दिया है और हार बन गई है, कंठ हार। किसका? कमला, जो ब्रज की नारियों है उनका कंठ हार बन गई है। और वो भगवान मुरारी के चरणों को भी एक जगह अपने आलिंगन में लेकर रोक लेती हैं। उनकी तो अनंत भुजाएं हैं, उनकी छोलियों के रूप में, लहरों के रूप में। ये बड़ी भाग्यशाली है, हम नहीं, गोपियां कह रही हैं। क्योंकि वेणु गीत को सुनकर ये सुख हमको नहीं मिल रहा है। उन्होंने अपना मर्यादा छोड़ के बहना बंद कर दिया, लेकिन हम अपने घर गृहस्थी के कार्य को छोड़ नहीं सकते, अपने पत्नियों की सेवा, पतियों की सेवा नहीं छोड़ सकती हैं। और हम सबके सामने आभूषण भी नहीं पहन सकती हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान के चरणों को हम अपने हाथों से पकड़ के उनको आलिंगन करके और उनको एक जगह रोक सके, ये भी हम नहीं कर सकती हैं, लेकिन नदियां ये सब कर रही हैं। क्या सौभाग्य है इन नदियों का। वैसे भी कहते हैं वृंदावन में जमुना जी ब्रज का कंठहार बनी हुई है, तीनों ओर से ब्रज को घेर के रखा है। ये श्लोक पढ़ के आज रखते हैं, कल कृष्ण कृपा करेगा नेट आ जाएगा। पता नहीं आजकल वो भीड़ ज्यादा है इसलिए नेट की समस्या है। दृष्ट्वा तपे व्रजे पशुन सह राम गोपी संचारयन्तम् अनुवेणुम् उदीर्यन्तम् प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावलिभिः सखयो व्यधात स्ववपुषा अम्बोद आतपत्रम्। आतपत्रम तो कहते हैं छाता को। स्ववपु अम्बुधा, अम्बुद कहते हैं बादलों को। तो इस श्लोक का भाव ये है, बलराम के संग में और ग्वाल मालों के से घिरे हुए श्री कृष्ण निरंतर जब वेणु वादन करते हैं तो झुंड के छुंड पशुओं के जो ब्रज में रहते हैं, गर्मी पूर्ण गर्मी की ऋतु की होती है, ऊपर से सूरज तपा हुआ होता है, परंतु वो कृष्ण को घेर लेते हैं और ये देखकर आकाश में बादल जो है वो चारों ओर से अपने प्रेम को इतना विस्तृत करते हैं और उनके अंदर से जैसे पुष्प वर्षा हो ऐसे जल की बूंदाबारी होने लगती है। अपने मित्र कृष्ण के लिए वो सब एक प्रकार से छाता बन जाते हैं बादल। गर्मी की ऋतु का सूर्य बहुत तपाने वाला होता है, इसलिए आकाश में बादल आ जाते हैं, कृष्ण और बलराम के ऊपर छाया कर लेते हैं। तो ये है दृष्ट्वा, जब देखते हैं, कौन देखते हैं, बादल देखते हैं। तप व्रज पशु, ब्रज के सारे पशु गर्मी सूर्य की के साथ से जल रहे हैं। सराम गोपी बलराम और गोपू के संग श्री कृष्ण संचार यंतम अनुवेणु उदीर यंतम। जब वो पशु पालन कर रहे हैं तो और गर्मी ऊपर से बहुत है, तब बार और बार बार वेणु वादन जैसे कर रहे हैं भगवान, उदयरंतम और बड़ी उच्च ध्वनि में जब वेणु बजा रहे हैं, अति प्रेम के कारण कुसुम अवली भी ही, कुसुम कहते हैं पुष्पों को, और अवली भी ही मतलब फुहारा, जल का फुहारा हो, ऐसे आकाश से बादल जो है छाया करके छाता की तरह और ठंडी ठंडी पुष्पों के समान बूंदाबारी करके उनको सुख देते हैं। तो ये भाव कल कृष्ण कृपा करेगा तो नहीं सोमवार को इसका श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। सारी आज का हमारा क्लास